ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं मधुर कार्यक्रमों की सुमधुर प्रस्तुति। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत श्री कृष्ण तत्व पर भगवान बाबा द्वारा दिए गए संभाषणों पर आधारित एक वार्ता सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत सद्गुरु साई विषय पर श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे और आज हम भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री कृष्ण तत्व पर भगवान श्री सत्यसाई बाबा द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए दिव्य संभाषणों पर आधारित एक वार्ता सुनेंगे। इसे लिपिबद्ध किया है श्रीमती वीणा सहगल जी ने एवं आवाज दी है श्रीमती किरण आचार्य जी ने।
सनातन धर्म के अनुसार जब जब धर्म का पतन होता है तब तब भगवान धरा पर मानव रूप में जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग के अवतार हैं। इनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए इनके जन्म को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। इनका श्याम वर्ण होने के कारण इनका नाम कृष्ण रखा गया था। बाबा कहते थे अष्टमी का संबंध परेशानियों और मुश्किलों से होता है, अतः कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थ अंधकार और परेशानियों को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट करना है। कृष्ण तत्व का सार प्रेम है, इसलिए प्रेम ईश्वर है। कृष्ण नाम में सभी नाम समाये हुए हैं, इसलिए कृष्ण चिंतन में भी सभी चिंतन समाये हुए हैं। कृष्ण भगवान सबसे प्रेम करते थे और अपनी दैवी लीलाओं से सबको दैवी आनंद प्रदान करते थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थ है जब मनुष्य के हृदय में दिव्यता प्रकट होती है, उस दिन उसका वास्तविक जन्म होता है। कृष्ण के जन्म के समय उनके माता पिता की जंजीरें स्वयं ही थोड़ी देर के लिए खुल गई थी और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए थे। मनुष्य का हृदय भगवान का जन्म स्थान होता है। बाबा कहते हैं उसे निर्मल और पवित्र रखें ताकि दिव्यता प्रकट हो सके और संसारिक बंधन अपने आप टूट जाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग का मध्यकाल था। दुर्जन लोग सज्जन लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। साधुओं के संरक्षण हेतु व दुर्जनों के विनाश हेतु कृष्ण भगवान मानव रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने अपने काल में अनेक राक्षसों व दुष्टों का संहार किया और मानवता की रक्षा की। उन्होंने प्रेम और शांति की स्थापना की। उन्होंने मथुरा और वृंदावन में अनेक दैवी लीलाएं की। इसीलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में उनके लिए लीला मानुष विग्रह विशेषण का प्रयोग किया। भगवान बाबा कहते हैं कि वे राजसिक तामसिक और सात्विक गुणों से परे थे। वे सदैव मुरली बजाते थे और सभी गोपी और गोपिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। वे सदैव दैवी आनंद व शांत चित्त रहते थे। इन दैविक गुणों के कारण उन्होंने युद्ध के मैदान के मध्य भाग में खड़े होकर गीता का उपदेश दिया। उनके दोनों ओर कौरव व पांडव खड़े थे जो धर्म और अधर्म के प्रतीक थे। 100 कौरव विकारों के प्रतीक थे और 5 पांडव सत्य, धर्म, शांति, प्रेम व अहिंसा पांच मानवीय मूल्यों के प्रतीक थे। गीता का अर्थ है गीत। बाबा कहते हैं कृष्ण भगवान की गुरु के रूप में सशक्त भूमिका रही है। उन्होंने अर्जुन को पार्थ से संबोधित करके पूरी मानव जाति को गीता का उपदेश दिया है। पार्थ का अर्थ होता है पृथ्वी का पुत्र। गीता का मुख्य उपदेश है मम धर्म, अर्थात मनुष्य का कर्तव्य क्या है। दूसरा, कृष्ण भगवान ने कहा है मेरे औजार बनो, तुम्हें उपकरण बनाकर मैं दुनिया में बदलाव लाऊंगा। अर्थात गीता के आदेश, उपदेश व संदेशों को अपने दैनिक आचरण में लाकर ही मनुष्य मानव से माधव बन सकता है। कृष्ण भगवान की अनेक गोपिकाएं व गोपाल थे, परंतु राधा उनकी प्रिय गोपिका थी। राधा का अर्थ है जो निरंतर जाप करने वाली और जो आराधना करने वाली है। बाबा कहते हैं राधा प्रकृति की प्रतीक है। प्रकृति ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, इसलिए सृष्टि ईश्वर को प्रिय है। राधा प्रकृति की संदेश वाहक है, इसलिए राधा संपूर्ण अमृत की धारा है। प्रकृति राधा के रूप में प्रकट होती है। राधा कृष्ण का परस्पर प्रेम, सृष्टि और सृष्टा, आत्मा और परमात्मा तथा मानव और माधव के प्रेम का प्रतीक है। राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं, इसलिए प्रकृति और परमात्मा का अटूट संबंध है। प्रकृति ईश्वर की प्रतिछाया, प्रतिध्वनि और प्रतिबिंब है। प्रकृति और परमात्मा एक है। परमात्मा का भौतिक रूप सृष्टि है, इसलिए गोपिकाएं श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए कहती थी, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अर्थात क्लीम का अर्थ है पृथ्वी, जो मूल तत्व है। कृष्णाय का संदर्भ जल तत्व है, जो मनुष्य का जीवन है। गोविंदाय का संकेत अग्नि तत्व से है, जो शक्ति का प्रतीक है। गोपी जन वल्लभ भाई का संदर्भ वायु से है, जो प्राण शक्ति है, श्वास की शक्ति है। स्वाहा आकाश तत्व का प्रतीक है, जो आत्म तत्व को संबोधित करता है। इस प्रकार यह मंत्र पांचों तत्वों का बोध कराता है, क्योंकि इन मूल तत्वों के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। बाबा कहते हैं जिस प्रकार पांचों तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है। गोपिकाओं ने कृष्ण के इस मंत्र से संपूर्ण संसार को संदेश दिया है कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कृष्ण ना हो। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। गोपिकाओं ने शिक्षा दी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु में ईश्वर विद्यमान है। अगर देखा जाए महाभारत युद्ध भी अच्छाई व बुराइयों के मध्य द्वंद का ही प्रतीक है। कृष्ण भगवान ने हृदय को क्षेत्र कहा है, जहां पांच मानवीय मूल्य व 100 प्रकार के विकारों के मध्य युद्ध होता रहता है। पांच मानवीय मूल्य सत्य, धर्म, शांति, प्रेम व अहिंसा पांच पांडवों के प्रतीक है, और कौरव 100 अवगुणों के प्रतीक है। कौरवों और पांडवों के मध्य में होने वाले युद्ध में कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया था, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां कृष्ण होते हैं, और जहां कृष्ण है वहीं विजय निश्चित है। स्वामी ने भी बताया है महाभारत युद्ध से पूर्व कौरवों ने सांसारिक वस्तुओं को मांगा था और पांडवों ने केवल कृष्ण को मांगा था, इसलिए उनकी विजय निश्चित ही थी। पांडव सर्वप्रथम स्थान पर कृष्ण को रखते थे, दूसरे स्थान पर संसार को और अंतिम स्थान पर स्वयं को रखते थे। वहीं दूसरी ओर कौरव प्रथम स्थान पर स्वयं को रखते थे, दूसरे स्थान पर सांसारिक संपत्ति को स्थान देते थे और ईश्वर को अंतिम स्थान देते थे, इसलिए उनका पतन तो निश्चित ही था। कहते भी हैं, इफ यू पुट गॉड फर्स्ट यू विल नेवर बी लास्ट। सखा अर्थात कृष्ण भगवान सबके प्रिय मित्र हैं। यही उनका सबसे प्रिय मानवीय पहलू भी है। स्वामी ने एक बार एक प्रवचन में एक कहानी बताई थी। एक दिन श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ को गागर उठाते हुए देख रहे थे। जब वो गागर उठा के जा रही थी तो वो सिर्फ देखते रहे उनको, परंतु जब गागर को उतारना था तो वे झटपट माँ की सहायता के लिए दौड़े। इस अनोखी हरकत पर माँ यशोदा हैरान हुई तो उन्होंने कहा, मैं भार हल्का करने आया हूँ, बढ़ाने नहीं। इसलिए गागर को सर पर रखते वक्त मैंने आपकी मदद नहीं की, क्योंकि मैं आपका भार कम करने आया हूँ माँ। श्री कृष्ण भगवान सबके हृदय को अपने प्रेम से आकर्षित करते हैं। उनकी दैवीय बांसुरी की धुन सबको आनंदित देती है। वे गोपिकाओं का मक्खन रूपी निर्मल हृदय चुराते थे। कभी कभी वे मटकी भी फोड़ देते थे। यशोदा माँ जब कारण पूछती थी तो वो बोलते थे, मैं निर्मल हृदय रूपी माखन चुराकर शरीर रूपी मटकी को फोड़ देता हूँ। मैं अपने भक्तों व प्रेमियों का आत्म तत्व ग्रहण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। जैसे हीरे से हीरा और लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार प्रेम से प्रेम पैदा होता है, और यही दैवीय प्रेम तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करता है। भगवान बाबा ने कहा है, कृष्ण भगवान की तीन दैवीय विशेषताएं हैं। पहला, कर्ष्यति इति कृष्णः, यानी जो हृदय रूपी खेत में हल चलाते हैं और उसको दुर्गुणों से मुक्त रखते हैं, वो कृष्ण है। दूसरा, कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वे कृष्ण है। भगवान कृष्ण अपनी दैवीय लीला, प्रेम और बांसुरी की धुन से सबको मोहित करते थे। और तीसरा, कर्ष्यति इति कृष्णः, जो आनंद प्रदान करते हैं, वो कृष्ण है। भगवान आनंद व प्रेम के स्वरूप है। वे सच्चित आनंद के स्रोत है। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ दुख व चिंताएं कभी नहीं होती। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सभी सांसारिक धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात तुम जो भी करो उसको फल सहित ईश्वर को अर्पण कर दो। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखो। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म को मन, वचन, कर्म से ईमानदारी से निभाओ। यही गीता का उपदेश है। बाबा कहते हैं, स्वयं को निरंतर याद दिलाते रहो, मैं दानव नहीं मानव हूँ, और जीवन भर मानवीय मूल्यों, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के अनुकूल जीवन जियो। यही कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश, उपदेश व आदेश है। जय साई राम।
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। कृष्ण तत्व पर आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के प्रवचनों पर आधारित एक वार्ता प्रस्तुत की गई थी।
अब प्रस्तुत है भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
हरि हरि नारायण,
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान विष्णु की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
हरि हरि नारायणा, हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेशा नारायण परतीशा नारायण साईशा नारायण।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी मध्यम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद एक का मध्यम भी कहते हैं।
हरि हरि नारायणा,
हरि हरि नारायणा,
हरि हरि नारायणा,
हरि हरि नारायणा,
हरि गोविंद नारायणा,
हरि गोविंद नारायणा,
हरि गोविंद नारायणा,
हरि गोविंद नारायणा,
हरि गोपाल नारायणा,
हरि गोपाल नारायणा,
हरि गोपाल नारायणा,
हरि गोपाल नारायणा,
श्री हरि नारायणा,
श्री हरि नारायणा,
श्री हरि नारायणा,
श्री हरि नारायणा,
ऋषिकेशा नारायणा,
ऋषिकेशा नारायणा,
ऋषिकेशा नारायणा,
ऋषिकेशा नारायणा,
परतीशा नारायणा,
परतीशा नारायणा,
साईशा नारायणा,
साईशा नारायणा,
हरि हरि नारायणा,
कहरवा ताल और राग चंद्रकौंस पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन में प्रयुक्त हुए तकरीबन सभी शब्दों के अर्थों से हम परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी इस भजन की पंक्तियों में निहित भावार्थ को समझने का हम प्रयास करेंगे। हरि ये भगवान विष्णु जी का ही एक और नाम है। भगवान बाबा कहते हैं कि हरि का अर्थ है हर लेना या नष्ट कर देना, लेकिन त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु जी तो संचालक की भूमिका में हैं और शंकर जी नष्ट करते हैं। इस संदेह का निवारण करते हुए भगवान कहते हैं कि विष्णु जी हमारी आध्यात्मिक साधना के मार्ग में आने वाले अवरोधों को हर लेते हैं, सभी बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। हरि शब्द की एक व्याख्या और है। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे शरीर का रंग हरा है, इसीलिए मुझे हरि कहते हैं। हरा रंग आंखों को शीतलता प्रदान करता है और मन को शांत करता है। इसीलिए हमें मन को शांत करने अथवा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। नारायण, ये शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, नार और अयन। नार शब्द को विच्छेद करने से हम पाते हैं न और अर। यहां न से तात्पर्य है जो नष्ट न हो और अर मतलब आत्मा। इस प्रकार नार शब्द का मतलब हुआ कभी नष्ट न हो सकने वाली आत्मा। अयन शब्द का मतलब होता है शयन करना या रमना। अतः नारायण का अर्थ हुआ वे जो सभी प्राणियों में कभी नष्ट न होने वाली आत्मा के रूप में विद्यमान हैं, अर्थात परमात्मा। और परमात्मा तो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। गोपाल शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, गो और पाल। गो का मतलब हुआ गऊ अर्थात गायें, और पाल मतलब पालन करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। गाय हमारी पशुवृत्ति की ओर इंगित करती है, अतएव गोपाल मतलब वे जो हमारी पाश्विक वृत्तियों पर संयम रखने में हमारे सहायक हों। भगवान बाबा बताते हैं कि गो से तात्पर्य इंद्रियों से भी है, अतः गोपाल मतलब वे जो इंद्रियों के मालिक हैं। अतः गोपाल नाम का स्मरण करने से हमारी इंद्रियां वश में रहती हैं और उनके सदुपयोग में हमें सहायता मिलती है। हमारी ऊर्जा निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचती है और हमारा आध्यात्मिक उत्थान सुनिश्चित होता है।
ऋषिकेशा नारायणा।
ऋषिकेशा, इसके कई अर्थ हैं, हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ऋषिकेशा दो शब्दों के योग से बना है, ऋषि जिसका मतलब है खुशी प्रदान करने वाला और केशा मतलब किरणें। महाभारत ग्रंथ में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अपने केशों अर्थात किरणों के माध्यम से संसार में क्रमशः जागृति और सुषुप्ति का संचालन कर प्राणियों को आनंदित करते हैं, इसीलिए मुझे ऋषिकेश कहते हैं। केश का एक मतलब बाल भी होता है। कहते हैं कि हमारे भीतर स्थित कभी कम न होने वाले आनंद को भी ऋषिकेश कहते हैं। जब हम रोमांचित होते हैं तो खुशी के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही है ऋषिकेश अवस्था का एक उदाहरण। भगवान बाबा की एक अनन्यतम भक्त श्रीमती एलसी कोवन जी बताती हैं कि एक बार स्वामी ने कुछ युवकों से कहा कि वे अपने लंबे बालों को कटवा लें। तो उन युवकों ने बाबा से प्रश्न किया कि स्वामी ने किस कारणवश अपने स्वयं के बालों को बढ़ाकर रखा हुआ है। तो भगवान ने एक कैंची लाकर उन्हें देते हुए कहा, लो काटो मेरे बाल। वे लोग भौंचक्के रह गए ये देखकर कि स्वामी के बालों से इतनी तीव्र किरणों की ऊर्जा निकल रही थी कि वे स्वामी के बाल काटना तो दूर उनके समीप अपना हाथ भी न ले जा सके। ऋषिकेशा शब्द का एक और अर्थ भी है। यदि हम इस शब्द को ऋषिक और ईश में विभाजित करें तो हम पाएंगे कि ऋषिक मतलब इंद्रियां और ईश मतलब स्वामी, मालिक या ईश्वर। इस प्रकार ऋषिकेशा मतलब हुआ इंद्रियों के स्वामी। स्वामी ने सन 1979 के समर कोर्स के दौरान दिए गए एक दिव्य संभाषण में कहा था कि ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी हैं और अर्जुन गुडाकेश हैं, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया हो या उन पर विजय पाली हो। ऋषिकेश गुडाकेश के भी स्वामी हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भी अर्जुन की ही तरह इंद्रिय निग्रह द्वारा दिव्यता को प्राप्त करें। इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इसे केवल और केवल भगवान के आशीर्वाद स्वरूप उनकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है।
परतीशा नारायणा साईशा नारायणा।
इस संबंध में भगवान बाबा के बचपन के सहपाठी श्री मीरा मोइनुद्दीन जी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला देने वाली एक अद्भुत घटना का स्मरण हो आता है। इसे सनातन सारथी के सन 1977 के दिसंबर माह के अंग्रेजी भाषा के संस्करण में प्रकाशित भी किया गया था। श्री मोइनुद्दीन जी उर्वकोंडा ग्राम में एक पंजीकृत चिकित्सक के रूप में अपनी आजीविका चला रहे थे। दुर्भाग्यवश वे मॉर्फिन ड्रग्स की लत का शिकार हो गए। स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक आ गई कि उनके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई और डॉक्टर साहब कर्ज में दिन प्रतिदिन डूबते चले गए। उन्हें अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा। उन्होंने अपनी नशे की इस लत को छोड़ने के हर संभव प्रयास भी किए, परंतु वे सब व्यर्थ ही साबित हुए, क्योंकि नशे की तलब से वे इस कदर परेशान हो जाते थे कि मानो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। वे हर प्रकार से निराश हो गए थे। नशे से उनकी हालत और नशे की उनकी लत के कारण उनके परिवार की दशा दोनों ही बद से बदतर होती जा रही थी। 9 साल होने को आए और अब तो उनकी नौकरी पर भी आफत के बादल मंडराने लगे। उसी समय उनके गांव में श्री सत्यसाई भजन समाज की स्थापना हुई। डॉक्टर मोइनुद्दीन जी के मित्र डॉक्टर एन आंजनेयलू जी इसके संस्थापक थे। एक दिन गुरुवार को जब उस संगठन के लोग एकत्रित होकर भगवान के भजन कर रहे थे, तब मोइनुद्दीन जी भी दूर एक कोने में बैठकर भजन सुनने लगे। भजनों के दौरान मोइनुद्दीन जी ने मन ही मन बाबा से बोला, बाबा मैं आपके बचपन का सहपाठी हूं, आपको याद तो होगा ही, और आपको तो ये भी ज्ञात ही होगा कि इस नशे की अपनी लत की वजह से मैं किस कदर परेशान हूं। कुछ लोग आपको भगवान मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन यदि आपने मुझे इस बुरी लत से छुटकारा पाने का आशीर्वाद दिया तो मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार कर लूंगा। अगले 3 दिनों तक मैं चाहे जो भी हो जाए नशे का सेवन नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद स्वरूप साहस एवं बल की आवश्यकता है, और यदि मैं 4थे दिन पूर्णतः स्वस्थ हो गया और मेरी ये नशे की तलब सदा के लिए चली गई तो मैं मान लूंगा कि आप साक्षात भगवान हैं। भजन का समापन हुआ और प्रसाद स्वरूप सभी को विभूति का एक पैकेट दिया गया। मोइनुद्दीन जी उसे लेकर घर आ गए और जब भी उन्हें नशे की तलब लगती तो वे चुटकी भर विभूति पुड़िया में से निकालकर खा लेते। 3 दिनों तक नशा नहीं करने के कारण उनकी स्थिति मरणासन्न हो गई, किंतु उन्होंने अपना प्रण नहीं त्यागा। 3रे दिन रात को 3 बजे के लगभग उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई। उनके परिवारजन भी घबरा गए उनकी हालत देखकर। मोइनुद्दीन जी ने अपनी बेटी से ताक में रखी विभूति की पुड़िया लाने को कहा। उनके विभूति खाते ही उन्हें 10 मिनट में नींद आ गई और वे अगले दिन सुबह 11 बजे तक सोए रहे। लेकिन जब वे जागे तो वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्हें नशे के सेवन की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उन्होंने मन ही मन स्वामी को धन्यवाद ज्ञापित किया और बुधवार को होने वाले नगर संकीर्तन में श्रद्धा सहित शामिल हुए। नगर संकीर्तन के समापन पर उन्होंने उसमें एकत्र सभी लोगों से अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि स्वामी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं और मुझे नशा करने की जरा सी भी तलब नहीं है। भगवान के इस कृपा चमत्कार के बारे में सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद विभोर हो उठे। श्री मोइनुद्दीन जी ने आगे कहा, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि भगवान का संकल्प हमारी बुरी आदतों से हमें सदा के लिए मुक्त कर सकता है, बशर्ते हम अपने आप को स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दें। मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है कि बाबा साक्षात भगवान हैं और उनकी कृपा ने ही मुझे बचाया है। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं।
हरि हरि नारायण,
के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में।
आप सुन रहे हैं रेडियो साई प्रशांति निलियम से हिंदी प्रसारण। इसके अंतर्गत अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के इस प्रसारण में हम सुनेंगे सन 1957 में वेंकटगिरी के सम्मेलन के कुछ और अनुभव। आज के प्रसंग में वो विवरण प्रस्तुत हैं जब बाबा ने इस सम्मेलन में आए योगियों और सन्यासियों को साक्षात्कार दिया, उनके अत्यंत निजी अनुभवों के बारे में चर्चा कर उन्हें अपने सानिध्य और दिव्यत्व का आनंद प्रदान किया। आइए आनंद लेते हैं ऐसे अलौकिक प्रसंगों का।
अगले दिन प्रतिनिधियों की एक विशेष सभा को पृथक से समझाते हुए बाबा ने उनसे अपील की कि वे एकाग्र चित्त होकर केवल और केवल अपने गुरु के प्रति भक्ति का पोषण करें और अपने जीवन में अपने आचरण से दिव्य जीवन संस्था के आदर्शों को प्रदर्शित करें जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। इसके बाद बहुत से लोगों के आ जाने से ये सभा एक सार्वजनिक सभा में बदल गई और इस सार्वजनिक सभा को बाबा ने एक घंटे तक संबोधित किया। उन्होंने समर्पण तथा भक्ति के पथ पर सभी को चलने का संदेश दिया। बाबा ने पूछा कि आप भगवान के हाथों में क्या बनना पसंद करेंगे, और उन्होंने स्वयं ही उत्तर देते हुए कहा, बांसुरी अर्थात वंशी। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग अपने जीवन को निश्चल तथा सरल कर अहंकार तथा मोह रहित होकर बांसुरी के समान भीतर से खाली हो जाएं और केवल भगवान के नाम की ही श्वास लेते रहें। तब भगवान स्वयं उस मुरली को हाथों में लेकर उसमें अपनी श्वास भर देंगे और जीवन सनातन आनंद के मधुर गीत में परिवर्तित हो जाएगा। साधना की एक स्थिति सायुज्य होती है। सायुज्य के विषय में प्रवचन करते हुए स्वामी श्री सदानंद जी ने कहा, मैं और कुछ आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता। बाबा का सामीप्य मैंने प्राप्त किया है, उनके चरणों में अपनी मन बुद्धि समर्पित की है, वे ही मेरे द्वारा आपको संबोधित कर रहे हैं। तत्पश्चात प्रस्थान्तरे नामक उपनिषद, भगवत गीता तथा ब्रह्म सूत्र, इन तीनों के तेलुगु भाषा में व्याख्यानकार एक महापंडित उठ खड़े हुए, कोहम। इस कठिन विषय को ही उन्होंने चुना, किंतु वे पुस्तकीय ज्ञान का बोझ उठाकर भटकते हुए शुष्क मायावादी नहीं थे। बाबा के कहे हुए मुरली समान हो जाओ, इस उपदेश ने उनके मन को झंकृत कर दिया था। वह उन्हें जचा और उन्होंने उस पर कुछ देर तक प्रवचन किया। कहते हैं कि उनके उस कवि हृदय को वे शब्द अति हर्षदायक प्रतीत हुए। इसके अतिरिक्त सबके समक्ष स्वयं की आलोचना करने का विशाल हृदय भी था उनका। उन्होंने इस सम्मेलन में आने के पूर्व अपने मन में उठे विचारों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने विषय में आपको एक बात बतानी ही चाहिए। वेंकटगिरी से जब निमंत्रण मिला, तब मैंने श्री सत्य साई बाबा से मिलने के लिए इस सम्मेलन में आने के लिए निश्चय किया, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना था और मैं इस अवसर का लाभ लेकर जो कुछ सुना था उसकी परीक्षा लेना चाह रहा था। मैं सच कहूं तो संक्षिप्त में मैं उन्हें परास्त करने आया था, परंतु मैं ही परास्त होकर जा रहा हूं। मुझे ये स्वीकार करने में बेहद खुशी भी हो रही है और अपनी इस त्रुटि के लिए मैं बाबा से क्षमा प्रार्थी भी हूं। ये एक और ऐसी घटना है जिसमें बाबा की उपस्थिति के तेज से गलतफहमी का कोहरा दूर हो गया। वेंकटगिरी से वापस रवाना होने से पहले बाबा वहां आए हुए सभी साधुओं और विद्वानों से बड़े खुलकर मिले। वे उनके मध्य स्वतंत्रता पूर्वक गए एवं उन्होंने प्रत्येक को लंबा साक्षात्कार दिया। स्वामी सच्चिदानंद ने बताया कि साक्षात्कार के लिए मुझे दूसरे क्रम पर बुलाया गया। बाबा ने प्रेम से मुझे गले लगाया और कहा कि वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे 37 वर्ष पूर्व की एक घटना की याद दिलाई जिसमें मुझे योग साधना के द्वारा एक दुर्लभ योगिक दृष्टि प्राप्त हुई थी। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा कि सतत प्रयासों से तुम्हें वो अनुभव हुआ था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुझे तत्क्षण ये भी कहा कि उतने उच्च स्तर पर पहुंचकर फिर तुम आश्रम की स्थापना, उसके लिए धन की व्यवस्था, लोगों से मिलना और योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने में समय क्यों लगाने लगे। मैंने अपनी इस वर्तमान गतिविधियों को अंततः लोक कल्याण के लिए संपन्न करने की दलील दी। इस पर हंसकर बाबा ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि योगी ज्ञान से उत्पन्न तरंगों से भी शुभ विचारों की तरंगें सभी की ओर व्याप्त होकर लोक कल्याण करती हैं। महात्माओं का सदचिंतन भी सब प्रकार की बाधाओं को दूर कर लोगों का मन सुधार सकता है। इसके बाद स्वामी सच्चिदानंद ने यह भी बताया कि बाबा ने उन्हें कहा कि अब अपनी पूर्व योग साधना को एकांत में बैठकर पुनः आगे बढ़ाओ। तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारी संपूर्ण देखभाल करूंगा। स्वामी सच्चिदानंद कहते हैं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण कभी भी मेरे समक्ष आया ही नहीं था। बाबा ने एकदम सुस्पष्ट और प्रमाणिक शब्दों में मुझे रास्ता दिखाया और उनकी करुणा तथा प्रेम ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आश्चर्यचकित भी था कि मेरे 37 वर्ष पुराने उस गुप्त अनुभव के बारे में भी बाबा जानते थे, जबकि ये अनुभव बाबा के जन्म के भी वर्षों पूर्व था। मैंने कुछ साहस बटोर कर उनसे यही प्रश्न किया कि वे अपने जन्म से पहले के मेरे अनुभव को कैसे जानते हैं। बाबा ने प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही दिया। बाबा ने कहा, क्या मैं जन्म लेता हूं, क्या मेरी मृत्यु होती है? निसंदेह उन सभी के लिए ये अनुभव अद्वितीय थे, जैसे साक्षात्कार मिलना, उनकी गहरी शंकाओं की पहचान होकर उनका अचूक निवारण होना, बाबा के द्वारा अपने अनुग्रह की वर्षा का आश्वासन मिलना, आध्यात्मिक उन्नति में उपलब्धियों का गहराना, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बाबा की सर्वव्यापकता व सर्वज्ञता से परिचित होना। ये था योगियों का योगेश्वर से साक्षात्कार। जो जीतने आए थे वे हार कर गए, और जो संप्रभुता दिखाने आए थे वे समर्पित होकर वापस गए, लेकिन भगवान के प्रेम पाश में बंधकर आनंद और प्रेम की भावना के साथ वापस गए, न कि पराजय की। मगर जब बाबा पुट्टपर्थी वापस आए तो स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी सदानंद ने बाबा के साथ दिव्य सानिध्य को चुना और वे भी पुट्टपर्थी साथ आए। एक शाम बाबा स्वामी सदानंद को लेकर प्रशांति निलयम की पहाड़ियों के पीछे के प्राकृतिक झरने की ओर गए। उस झरने के पास बैठकर बाबा चैतन्य की व्याख्या कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मनुष्य, वनस्पति और शिलाओं में सभी में चैतन्य व्याप्त है। स्वामी सदानंद इसी संदर्भ में उपनिषदों के उद्धरण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित है। अचानक स्वामी का स्वर प्रभावपूर्ण हो गया और उन्होंने स्वामी सदानंद से कहा, तुम उन्हें प्राचीन कहते हो, मैं इन सभी को जानता हूं, मैं काल तथा स्थान से परे हूं। इसके बाद वो चर्चा शैव सिद्धांत और लिंग की आराधना पर मुड़ गई, क्योंकि स्वामी सदानंद ने दक्षिण भारत के शैव मत के उद्भव व इतिहास पर एक ग्रंथ लिखा था। उस दिन तमिल नववर्ष था। स्वामी ने अपना खाली हाथ हवा में घुमाकर पोली नामक एक मिठाई सृजित की और वहां बैठे सभी भक्तों को दी। तमिल गृहिणियां इस मिष्ठान को इस पवित्र दिन बनाती हैं। स्वामी इसके उपरांत कुछ दिनों के लिए कुड़ई केनाल गए एवं स्वामी सदानंद व स्वामी सच्चिदानंद भी उनके साथ गए। पहाड़ों पर बिताए हुए लगभग 6 हफ्तों में इन सन्यासियों को बाबा के अनुग्रह की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति के अवसर मिले। स्वामी सच्चिदानंद ने 29 जून सन 1957 को तपोवन के शुभारंभ के अवसर पर बताया कि उनके व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर वे निसंदेह जान गए हैं कि बाबा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सभी की अंतरात्मा में स्थित परम चैतन्य प्रभु हैं।
आज हमने सुना कि किस प्रकार महापंडित और ज्ञानवान योगी जनों को भी भगवान ने अपने बड़े ही प्रेम और सनातन आत्मिक संबंध से मोहित कर लिया। जो जीतने आए थे वे समर्पित होकर गए, जो संशय के साथ आए थे वे शरणागत होकर ज्ञान की पिपासा और दैवीय सानिध्य की आकांक्षा में डूब गए। स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी सदानंद को अपने अपने निवास स्थान जाने के स्थान पर बाबा के प्रेम पाश में बंध कर बाबा के साथ ही पुट्टपर्थी आ गए। हमने यह भी सुना कि बाबा ने तमिल नववर्ष के उपलक्ष्य में मिठाई सृजित कर सभी भक्तों को दी। निश्चित रूप से जब भगवान मिल जाए तो उनके साथ का इंतजार सभी को रहेगा। किसी ने कहा है, दर्शन की अगर ललक है तो इजहार क्यों न हो। प्रभु के निकट जाने का इंतजार क्यों न हो। जब प्रेम की उस डोर ने झकझोर दिया हो तो दौड़ते कदमों में रफ्तार क्यों न हो। जी हाँ, योगियों को जब योगेश्वर मिल गए तो मानो उनके कदमों को एक नई रफ्तार और उनके आध्यात्मिक पंखों को एक नई उड़ान मिल गई। मन को मोह लेने वाले ऐसे ही प्रसंगों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साई राम।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज हम भगवान द्वारा सद्गुरु साई विषय पर उनके उद्गार सुनेंगे।
ప్రేమ స్వరూపులారా,
ప్రేమ స్వరూపం,
స్వామి ఇంత కఠినంగా చెప్తున్నాడు అనేటువంటి విషయంలో మీరు ఏమాత్రం బాధపడకూడదు.
స్వామి ఇతని కఠోరతాపూర్వక్ ఇస్ విషయ కే బారే మే బతా రహే హై, యే సబ్ దేఖ్ కర్ ఆప్ లోగ్ దుఖీ మత్ హోనా.
నిజముగా మనలోని దోషములు చెప్పేటువంటి వాడే నిజమైన గురువు.
జో కడ్వీ సచ్చాయి కో వైసా హీ బతలానే సే డరే నహీ, వహీ హమారా సచ్చా గురు హోతా హై.
మన దోషాలన్నిటిను కేవలం కప్పిపుచ్చినటువంటి వాడే మహాద్రోహి.
హమారే దోష్ హమ్సే ఛిపానే వాలా హమారా సబ్సే బడా శత్రు హై.
కనుక మనకు హితముగా మీరు భావించాలి.
యే సబ్ హమారే హీ హిత్ కే లియే హై, ఆప్ లోగ్ ఐసా విశ్వాస్ కీజియే.
మీలో ఉన్నటువంటి దోషాలంతా కూడాను దూరం చేసుకోవాలి.
తుమ్హారే అందర్ వ్యాప్త్ బురాయియో కో దూర్ కర్నా హీ ఉద్దేశ్య హై.
ఇంకా ముందైనా కూడాను దోషరహితమైనటువంటి చిత్తులు కావాలి.
इसके बाद हमारा हृदय दोष रहित होना चाहिए।
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने श्री भगवान की मधुर वाणी में सद्गुरु साई विषय पर उनके उद्गार सुने। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम पश्चिम बंगाल राज्य संगठन के कोलकाता में स्थित पाठशाला श्री सत्य साई बाल विहार की शिक्षिका सुश्री संचिता जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 31 जनवरी सन 2018 को रिकॉर्ड की गई थी।
संचिता जी, आप भी बंगाल से हैं और बैच इंचार्ज के रूप में ही आई हैं। आप श्री सत्य साई बाल विहार में शिक्षिका हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपके सेवा के अनुभव आप हमें बताएं। सबसे पहले कि आपको साईं बाबा के बारे में कैसे मालूम हुआ?
भगवान श्री सत्य साई बाबा ही हम लोगों का हेड ऑफ द फैमिली है, तो इस वजह से ही मेरी बचपन से ही स्वामी और सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन इससे मेरा रिश्ता बन गया। तो मेरी फैमिली में मेरी माँ ही पहली बार पढ़ती आने वाली थी। इट वॉज 1974।
आप तो बहुत छोटी रही होंगी तब।
हाँ हाँ,
4 years ओनली। आपने बाबा को देखा जब पहली बार आई थी तो?
हाँ हाँ, मैंने आए थे 1975 में।
हाँ,
शिवरात्रि के टाइम पर।
अच्छा,
तो मैंने विभूति अभिषेकम भी देखा।
बहुत विशेष अवसर पर।
हाँ,
आपका पहली बार आना और उनके दर्शन करना।
हाँ हाँ,
फिर आपके मन में क्या भाव आया उनको देख के?
पहले से ही, छोटे से ही मेरे को लगता है कि स्वामी मेरा दोस्त है, अच्छे, सबसे अच्छे दोस्त है। मैंने माँ ने सिखाया कि बेस्ट फ्रेंड बनाओ तो स्वामी को बनाओ। उससे ही वो चाइल्डहुड में सुना हुआ ना, वो मैं विश्वास किया। आज भी यही विश्वास लेकर चलती हूँ कि स्वामी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बालविकास किए थे।
आप स्टूडेंट रह चुके
हैं? हाँ हाँ, बाल विकास
स्टूडेंट। बाल विकास स्टूडेंट भी रह चुके हैं।
अच्छा, तो बाल विकास और मेरी घर की वातावरण, ऐसे सब मिलकर हमें वो शक्ति दिया कि मेरे को ले जाना है ईसाई लिगेसी को।
तो अभी स्कूल में पढ़ाई के या पाठ्यक्रम के अलावा साई के बारे में क्या क्या सिखाते हैं आप लोग?
वैसे मैं थोड़ी आगे से कह जाता हूँ।
हाँ, हाँ, जरूर।
वैसे मैं कभी भी करियरिस्टिक नहीं थी। 2000 में अचानक एक दिन मेरी माँ ने मुझे श्री सत्यसाई बाल विहार जो कलकत्ता में है वेस्ट बंगाल में उसके बारे में स्कूल के बारे में बताया। वहाँ का सेक्रेटरी मेरी मम्मी को बताई कि वो लोग चाहते हैं कि मैं ये स्कूल ज्वाइन करूं। सच कहो तो कोई भी प्रोफेशन में मेरा कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, तो मैं बस यूं ही एक दिन वो स्कूल देखने के लिए चल पड़ा क्योंकि मेरी माँ चाहती थी। तो माँ ने बोला कि अपने बाल विकास शिक्षा को अभ्यास करने के लिए ये अच्छी जगह है सत्यसाई स्कूल, अभ्यास करो और वो ज्यादा ज्यादा बच्चों को सिखाओ
जो तुमने पाया है।
हाँ,
वो आगे बच्चों को
सीखना है।
फिर वहां जाके आपको कैसा लगा?
एक क्या बताओ, इस तरह स्वामी के टीचिंग्स के साथ जुड़ा रहने के लिए उनके डिवाइन मैसेज को लोगों में बांटने पर मेरे जो पैशन था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। तो स्वामी ने किया मेरे पैशन को प्रोफेशन कर दिया।
उनकी ग्रेस ना हो, कृपा ना हो, तो ऐसे अनुभव, ऐसी बातें, फीलिंग अंदर से नहीं आती है। आपकी आई है तो उनका ही आशीर्वाद है।
और इस स्कूल में लगभग सभी स्टूडेंट्स ही फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स से।
अच्छा,
फर्स्ट जनरेशन लर्नर।
तो क्या उन लोगों को स्वामी के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम था या कुछ भी मालूम नहीं था?
हाँ, नाम सुना उन्होंने बस,
पुट्टपर्ती के सत्यसाई बाबा,
सत्यसाई बाबा है
ये उनका स्कूल है।
हाँ, हाँ, बस हाँ। ये सब बच्चों को स्वामी के बारे में हम लोग बताते हैं और धीरे धीरे उनका भी बच्चे अभी एट प्रेजेंट वो लोग भी उनके बच्चों को स्कूल में डालते हैं।
तो स्कूल खुलने के बाद सेकेंड जनरेशन भी स्कूल में पढ़ने आ रही है।
आ रही है सेकेंड जनरेशन।
चलिए, आपकी मेहनत, आपकी लगन सफल हो रही है। अब आप ये भी बताइए, कभी कोई घटना आपके जीवन की जिसमें आपको लगा हो कि नहीं, सिर्फ गुरु या महापुरुष नहीं, ये तो साक्षात भगवान है?
वो तो मैंने हर पल, वो जो छोटी से हम विश्वास, मैंने विश्वास किया, मेरी माँ को विश्वास किया, इसीलिए मेरी माँ ने बोला वही भगवान है। तो मैंने और कुछ सोच भी नहीं सकता, स्वामी भगवान है। ऐसा इंसिडेंट तो ज्यादा ज्यादा होता है। मेरे पिताजी के साथ ही ऐसा कुछ हुआ था। पिताजी का स्लिप डिस्क का पेन तकलीफ था।
अच्छा,
बहुत ही। 1987 में वो भर्ती आए थे ड्यूटी करने के लिए।
अच्छा, रेगुलर सेवा में भर्ती आया करते थे।
हाँ हाँ हाँ, ड्यूटी करने। तब भी स्लिप डिस्क का पेन काफी बढ़ गया, तो उसका मंदिर में ड्यूटी था। उस दर्द को सहते हुए वो सेवा करते गए। तभी दो दिन बाद अचानक गोकुलम में किसी क्राइसिस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा सेवादल की जरूरत पड़ी, तो मंदिर से कुछ सेवादल को वहां भेजा गया जिसमें मेरा पिताजी भी थे। हम सब तो ये सबको तो पता है ना, स्लिप डिस्क का स्लिप डिस्क कितना पेनफुल है।
हाँ, बहुत ज्यादा दर्द है। और झुकना या भारी चीजें उठाना कोई भी स्ट्रेन करना
मना है,
ठीक नहीं है उसके लिए।
तो पिताजी को गोकुलम में काम करने के मना कर दिया हम लोगों का तब का सेवादल इंचार्ज, तुम मत जाओ, तुम इस करना मना है। तो पिताजी ने ठान लिया कि किसी भी हालत में वो उधर सेवा करेगा। जो स्वामी ने बोला ना, डू नॉट वरी आई विल टेक केयर, इसे विश्वास करने के लिए स्वामी वो पिताजी ने गए थे। उसी आत्मविश्वास और सेवा करने की उत्साह से वो गोकुलम में ही सेवा करने लगे। और गजब की बात तो यही है कि सेवा करते करते वो भूल ही गया कि उनका स्लिप डिस्क का इतना पेन थी, और क्या बोलूं, वो स्लिप डिस्क का वही पेन उस दिन के बाद आज तक कभी भी नहीं हुई।
उस घटना ने हमें ये बता दिया कि वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपने तो भजन भी सिखाती हैं क्या?
हाँ हाँ जरूर, भजन तो सिखाना ही, भजन इतना
अगर हो सके तो किसी भजन की दो पंक्तियां हमारे लिए गा दें।
साई राम घनश्याम भगवान तुम्हारा नाम, तुम बिन कोई नहीं रखवाले, तुम बिन कोई नहीं आप संभाले, तुम बिन प्रेम कोई नहीं देने वाले, तुम हो मेरे आत्मा भगवान तुम्हारा नाम, साई राम तुम्हारा नाम।
वाह, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपकी मीठी और मधुर भावभीनी आवाज में। ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी यहीं बैठे हैं और आपका भजन सुन रहे हैं।
स्वामी हमारे ये अपॉर्चुनिटी मिला इसीलिए रेडियो साई को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों का बहुत अच्छा लगा।
रेडियो साई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
साई राम,
साई, साई राम, राम।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत श्री सत्यसाई बाल विहार कोलकाता की शिक्षिका सुश्री संचिता जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई। टीम रेडियो साई की ओर से संचिता जी से मुखातिब थीं श्रीमती नीता जी बनर्जी।
इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org, एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258, 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फूल तो बहुत है बगीचे में, पर गुलाब की बात अलग है। जिंदगियां तो बहुत मिलेंगी शोर मचाने को, पर साई की आवाज बनने में बात अलग है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साईराम।